एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। एमोर टोल्स का उपन्यास ए जेंटलमैन इन मॉस्को। इसने दुनिया भर में मतलब बहुत सारे पाठकों का दिल जीता है।
हाँ बिल्कुल, और लेखक भी बड़े दिलचस्प हैं। एमोर टोल्स पहले वो निवेश की दुनिया में थे और फिर अचानक लिखने लगे,
है ना? और उनकी लिखाई में एक अलग ही क्या कहते हैं नफासत है, एक पुराना चार्म, जैसे 19वीं सदी के क्लासिक्स पढ़ रहे हो।
सही कहा। ए जेंटलमैन इन मॉस्को 2016 में आई और आते ही छा गई, बहुत पसंद की गई।
और कहानी कहानी तो एकदम हटके है। सोचिए जरा, 1922 का रूस, बोल्शेविक क्रांति के ठीक बाद का समय।
हाँ, वो उथल पुथल वाला माहौल, और उसमें एक रईस काउंट अलेक्जेंडर रोस्तोव, जिसे मौत की सजा नहीं मिलती
बल्कि मॉस्को के एक आलीशान होटल होटल मेट्रोपोल में पूरी जिंदगी नजर बंद रहने की सजा मिलती है।
बिल्कुल, यही तो इस उपन्यास का मतलब केंद्र बिंदु है। एक आदमी जिसकी दुनिया पहले कितनी बड़ी थी, महाद्वीपों तक फैली हुई,
और वो सिमट कर रह गई बस एक इमारत में। तो आज हम इसी सवाल पर गौर करेंगे कि भाई, जब आपकी बाहरी आजादी आपसे छीन ली जाए, तो क्या तब भी एक अच्छी, एक भरपूर, एक बामकसद जिंदगी मुमकिन है?
हाँ, ये किताब इसी की गहराई में उतरती है। तो कहानी शुरू होती है 1922 में। काउंट रोस्तोव खड़े हैं एक बोल्शेविक न्यायाधिकरण के सामने।
और उनका अपराध कोई बड़ा जुर्म नहीं, बस ये कि वो पुराने जमाने के अमीर हैं, अभिजात वर्ग से हैं।
और विडंबना देखिए, उनकी जवानी में लिखी एक कविता
हाँ,
जिसके बारे में माना जाता था कि उसने क्रांति को हवा दी,
हाँ,
वही कविता एक तरह से उन्हें बचा भी लेती है। सजा मिलती है पर मौत नहीं, होटल मेट्रोपोल में नजरबंदी।
और शर्त शर्त ये कि अगर होटल से बाहर कदम रखा
तो गोली मार दी जाएगी।
कितनी अजीब सजा है ये, है ना? ऐसा लगा जैसे किसी पंछी को सोने के पिंजरे में डाल दिया हो।
बिल्कुल, काउंट जो आदि थे दुनिया घूमने के, शानदार दावतों के, बेहतरीन वाइन के, अब उनका वो आलीशान स्वीट वो भी गया।
कहाँ भेज दिया उन्हें?
नौकरों के लिए बने एक छोटे से एटिक कमरे में छत के नीचे, और सारी कीमती चीजें, विरासत, सब जब्त।
शुरुआत में तो यकीनन बहुत मुश्किल हुआ होगा।
जाहिर है, पूरी तरह टूट गए होंगे। ऐसा लगा होगा जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई, वो तहजीब, वो नजाकत, सब बेमानी।
लेकिन यहीं से काउंट का असली चरित्र उभरता है ना?
हाँ बिल्कुल, वो एक फैसला करते हैं, एक संकल्प, और वही पूरी कहानी की नींव बनता है। वो कहते हैं, अगर इंसान अपने हालात को काबू में नहीं रखता तो हालात उसे काबू में कर लेते हैं।
वाह, ये हार मान लेना नहीं है, ये तो अपनी शर्तों पर जीने का ऐलान है।
एकदम सही, और यहीं से शुरू होती है उनकी अडैप्टेशन की कहानी। अडैप्टेशन, वो हार नहीं मानते, अपनी उस छोटी सी दुनिया को नए सिरे से जीना शुरू करते हैं।
कैसे, मतलब क्या करते हैं वो?
अपनी दिनचर्या बनाते हैं, सुबह उठना, कॉफी पीना, पढ़ना, सोचना, अपने शिष्टाचार, अपनी आदतें, वो वैसी ही बनाए रखते हैं जैसे वो आजाद हों।
ये एक तरह का अंदरूनी विद्रोह हुआ बाहरी कैद के खिलाफ।
हाँ कह सकते हैं। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उनकी मुलाकात होती है एक 9 साल की लड़की से, नीना कुलकोवा।
अच्छा, नीना?
नीना वो छोटी सी लड़की जैसे काउंट के लिए एक ताजी हवा का झोंका थी, जिद्दी, बहुत जिज्ञासु,
और उसके पास कुछ खास था शायद।
हाँ, उसके पास थी होटल की मास्टर चाबी, वो चाबी जो सारे दरवाजे खोल सकती थी।
अरे वाह,
और वो काउंट को होटल के वो राज दिखाती है जो किसी को नहीं पता, गुप्त रास्ते, छिपे हुए कमरे, पहखाने।
तो वो होटल जो पहले जेल लग रहा था,
वो अब एक रहस्यमय दुनिया बन गया, एक एडवेंचर लैंडस्केप जिसे खोजा जा सकता है। नीना के जरिए काउंट सीखते हैं कि कैद में भी देखने और खोजने को बहुत कुछ हो सकता है।
ये दोस्ती तो बहुत अहम रही होगी फिर। नीना ने उन्हें सिर्फ होटल नहीं दिखाया, शायद जीने का एक नया नजरिया भी दिया।
बिल्कुल, और इसी दौर में उनकी मुलाकात होती है ग्लैमरस फिल्म अभिनेत्री से, अन्ना उर्बानोवा।
अन्ना उर्बानोवा, उनके साथ कैसा रिश्ता बनता है काउंट का?
एक बहुत गहरा उतार चढ़ाव भरा रिश्ता जो कई सालों तक चलता है। अन्ना उन्हें कला, थिएटर, बाहरी दुनिया की जो थोड़ी बहुत हलचल है उससे जुड़े रखती है, एक ऐसी दुनिया जो उस वक्त की सोवियत विचारधारा से काफी अलग थी।
तो धीरे धीरे काउंट की दुनिया फिर से बसने लगती है, लेकिन होटल की दीवारों के अंदर।
हाँ, वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो जी रहे थे, और यहीं हमें वो पाए गए परिवार वाली बात दिखती है, फाउंड फैमिली,
जिसे हम शायद मन मिला परिवार कह सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो खून के रिश्ते से नहीं जुड़े पर दिल से जुड़ जाते हैं, जरूरत से, लगाव से।
बिल्कुल, जैसे होटल के कर्मचारी, एमिल जुकोव्स्की जो शानदार शेफ हैं, आंद्रे ड्यूराज जो मेट्रे डी हैं, मतलब रेस्टोरेंट मैनेजर, कैसा कदम उठाते हैं जो सबको हैरान कर देता है।
क्या करते हैं वो?
वो होटल के मशहूर बॉयर्स की रेस्तरा में हेड वेटर का काम करने लगते हैं।
क्या? एक काउंट वेटर?
हाँ, और ये पैसों के लिए नहीं था, ये था मकसद के लिए, अनुशासन के लिए, दूसरों की सेवा में एक मूल्य खोजने के लिए।
इससे तो उन लोगों का नजरिया बदला होगा।
बिल्कुल, वो न सिर्फ एमएल का सम्मान जीतते हैं बल्कि उनके साथ मिलकर एक तिकड़ी बनाते हैं, द ट्रायम्विरेट।
ट्रायम्विरेट?
हाँ, ये तीनों मिलकर बॉयर्स्की को उत्कृष्टता की, मतलब बेहतरीन सर्विस की मिसाल बना देते हैं। ये उनका अपना तरीका था उस दौर की एकरसता और साधारणता के खिलाफ एक खामोश प्रतिरोध का।
ये दिखाता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मायने रखता है कि आप उसे कैसे करते हैं, कितनी गरिमा से, कितनी लगन से।
बिल्कुल सही। और वक्त गुजरता जाता है, कहानी 30 साल से ज्यादा के वक्त को अपने में समेट लेती है।
हाँ, ये उपन्यास बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे होटल के अंदर काउंट की जिंदगी चल रही है, सुसंस्कृत, एक हद तक महफूज।
और बाहर की दुनिया कितनी कठोर है, स्टालिन का दौर, राजनीतिक सफाए, दूसरा विश्व युद्ध, ये सब खबरें होटल की दीवारों से छन कर अंदर आती तो हैं।
और इसका असर भी पड़ता होगा।
हाँ, जैसे काउंट के पुराने दोस्त मिश्का की कहानी बहुत दर्दनाक है। वो कवि थे, कभी क्रांति के समर्थक भी थे।
फिर क्या हुआ उनके साथ?
राज्य की सेंसरशिप, दबाव, उसने उन्हें तोड़ दिया और आखिर में उन्हें गुलाग भेज दिया गया, साइबेरिया के लेबर कैंप।
ओह, मिश्का का ये अंत याद दिलाता है कि होटल भले ही कितना आलीशान हो, बाहर की बेरहम दुनिया से पूरी तरह बचा नहीं सकता था।
सही कहा। क्या होटल एक बुलबुला था या बाहरी दुनिया की परछाइयां अंदर आई जाती थीं? शायद दोनों बातें सच थीं।
परछाइयां तो आती ही थीं, और सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी तो खतरे थे, जैसे वो बिशप नाम का किरदार।
हाँ, बिशप लेप्लेव्स्की पहले एक अनाड़ी सन हेटर था जिसे काउट ने कभी उसकी गलती पर टोका था,
और फिर वो पार्टी में ऊपर चढ़ गया।
हाँ, धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर चढ़ता गया और होटल में एक छोटा मोटा अधिकारी बन गया। वो उस नई व्यवस्था की छोटी सोच, जलन, द्वेष उसका प्रतीक है।
और वो काउंट के लिए मुश्किलें खड़ी करता है?
कोशिश तो करता है, लेकिन इन कोशिशों से काउंट की शान, उनका संयम, वो और भी ज्यादा उभर कर आते हैं। वो दिखाते हैं कि असली अधिकार पदवी से नहीं, चरित्र से आता है।
ऐसी मुश्किलों के बीच होटल मेट्रोपोल क्या बन जाता है? रूस का एक छोटा सा नमूना।
हाँ, एक माइक्रोकॉस्म जहां बाहर की राजनीति, तनाव, सब कुछ है, और साथ ही ये एक पनाहगाह भी है, एक सेंचुरी जहां इंसानियत, कला, संस्कृति, ये सब जिंदा रह सकते हैं।
और कला और संस्कृति का रोल कितना बड़ा है यहाँ। वो बॉयर्स की रेस्टोरा में खाने की बारीकियां,
किसी कहानी पर होने वाली बहसें, अन्ना का अभिनय और बाद में सोफिया का संगीत,
ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उस मानवीय जज्बे को जिंदा रखने का तरीका है जिसे राजनीतिक व्यवस्था कुचलना चाहती है, एक तरह का खामोश प्रतिरोध।
और वो वाइन वाला किस्सा याद है, जब पार्टी आदेश देती है कि तहखाने की हजारों वाइन की बोतलों से लेबल हटा दो ताकि वर्ग भेद मिट जाए।
हाँ हाँ, सब परेशान, लेकिन काउंट,
काउंट अपनी विशेषज्ञता से किसी भी वाइन को चक्कर पहचान लेते हैं। ये दिखाता है कि आप बाहरी पहचान भले छीन लें, पर स्वाद, इतिहास, व्यक्तित्व, उसे मिटाना नामुमकिन है।
क्या शानदार जवाब था ये, थोपी गई एक रूपता को।
बिल्कुल, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब कई साल बाद, शायद 1938 में, नीना लौटती है।
वही नीना, वो छोटी लड़की?
हाँ, लेकिन अब वो चुलबुली लड़की नहीं रही, एक थकी हुई, नाउम्मीद औरत बन चुकी है। क्रांति के जिन आदर्शों पर उसे यकीन था वो सब टूट चुके हैं, उसका पति गिरफ्तार हो चुका है,
और वो काउंट से मदद मांगती है।
वो काउंट से कैसी गुजारिश करती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो कहती है कि वो उसकी 5 साल की बेटी सोफिया का ख्याल रखें, बस कुछ वक्त के लिए, जब तक वो साइबेरिया जाकर अपने पति को ढूंढ नहीं लेती।
ओ, काउंट क्या करते हैं?
हिचकिचाते हैं पहले, लेकिन फिर मान जाते हैं। छोटी सोफिया होटल आ जाती है, बिल्कुल शांत, सहमी हुई सी बच्ची।
और नीना, वो लौटती है?
नहीं, नीना कभी वापस नहीं लौटती, शायद वो भी उसी व्यवस्था का शिकार हो गई।
तो अब काउंट रोस्टोव अचानक एक पिता की भूमिका में?
हाँ, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब उनका मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी को गरिमा से जीना नहीं रहा, अब उन्हें इस बच्ची को पालना है, पढ़ाना है, महफूज रखना है।
पहले मकसद अपनी जिंदगी बचाना था, अब किसी और की जिंदगी बनाना था।
क्या खूब कहा। ये जिम्मेदारी उन्हें एक नया मकसद देती है, एक ऐसा प्यार जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। होटल जो पहले जेल था फिर एक दुनिया बना,
अब सोफिया के लिए एक घर बन जाता है।
हाँ, और काउंट की देखभाल में सोफिया बड़ी होती है और उसमें संगीत की एक अद्भुत प्रतिभा निकलती है। वो एक बेहतरीन पियानो वादक बनती है।
उसका संगीत तो जैसे होटल की दीवारों में एक नई जान डाल देता होगा।
बिल्कुल, एक नई रूह फूंक देता है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने चरम की तरफ बढ़ती है। साल है 1954, स्टालिन की मौत हो चुकी है, माहौल थोड़ा बदला है
और सोफिया अब जवान हो गई है, एक जानी मानी पियानो वादक।
हाँ, और उसे पेरिस में एक बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का मौका मिलता है।
पेरिस? तो काउंट इसे एक मौके की तरह देखते हैं, सोफिया को वो आजादी दिलाने का मौका जो उन्हें कभी नहीं मिली।
बिल्कुल, और शायद नीना को भी नहीं मिली। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। काउंट सालों से, मतलब एक तरह से तैयारी कर रहे थे।
कैसे?
उन्होंने बड़ी होशियारी से एक ऊंचे पार्टी अधिकारी ओसिप ग्लिबनिकोव से रिश्ता बनाया था। वो ओसिप को पश्चिमी तौर तरीके सिखाते थे, बदले में थोड़ी जानकारी, थोड़ी सुरक्षा पाते थे।
अच्छा।
और काउंट सोफिया को पेरिस से भगाने की, मतलब उसके दल बदल की, एक बहुत ही पेचीदा योजना बनाते हैं।
और इसमें वो अकेले नहीं होंगे?
नहीं, उनका पूरा मन मिला परिवार, शेफ एमिल, मेट्रोडी आंद्रे, एना और बानोवा, यहाँ तक कि होटल का दर्जी, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, सब इस खतरनाक काम में उनका साथ देते हैं।
ये उस समुदाय की ताकत है, काउंट के प्रति उनकी वफादारी जो इतने सालों में बनी थी।
एकदम, योजना कामयाब होती है। सोफिया पेरिस में सफलतापूर्वक दल बदल कर लेती है, मतलब वहीं रह जाती है, सोवियत यूनियन वापस नहीं आती।
और काउंट, उनका क्या होता है?
उसी रात काउंट अलेक्जेंडर रोस्टोव पूरे 32 साल होटल मेट्रोपोल में गुजारने के बाद पहली बार चुपचाप होटल से बाहर कदम रखते हैं और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं।
गायब मतलब अधिकारी उन्हें ढूंढ नहीं पाते?
नहीं ढूंढ पाते। उपन्यास का अंत थोड़ा धुंधला है लेकिन उम्मीद से भरा है।
तो क्या वो पश्चिम भाग गए?
नहीं, कहानी इशारा करती है कि वो रूस के ही किसी छोटे गुमनाम शहर में है, एक सराय में,
और वो इंतजार कर रहे हैं सुनहरे बालों वाली महिला का,
यानी अन्ना उर्बानोवा का।
हाँ।
वो आखिरकार आजाद हैं, अपनी शर्तों पर, अपनी मोहब्बत के साथ, उसी रूस में जिसे उन्होंने कभी दिल से छोड़ा ही नहीं था।
32 साल की कैद के बाद आजादी, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि किसी और को आजाद करने और फिर खुद अपनी राह चुनने के लिए। क्या सफर है ये,
है ना?
एक इंसान जो अपना सब कुछ खो देता है लेकिन फिर भी अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा और जीने का मकसद वो ढूंढी लेता है।
ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी बात शायद यही कि बाहरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो,
असली आजादी और खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे नजरिए में।
बिल्कुल, और वो अनुकूलन की शक्ति, काउंट का वो मंत्र, हालात को काबू में रखो वरना वो तुम्हें काबू में कर लेंगे, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जीने का एक तरीका है।
हाँ।
और कहानी ये भी दिखाती है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, प्यार से बनता है, सम्मान से, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से बनता है, वो मन मिला परिवार।
और कला का महत्व, संगीत, साहित्य, अच्छा खाना, ये सब सिर्फ वक्त गुजारने के तरीके नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुश्किल दौर में इंसान बने रहने का, अपनी रूह को जिंदा रखने का जरिया है। और इमोटोल्स की लिखने की शैली कमाल की है, बहुत सधी हुई, मजेदार और गहरी।
हाँ, वो सर्वज्ञ कथावाचक का इस्तेमाल करते हैं ना, ऑम्निशिएंट नरेटर, जो सब कुछ जानता है, किरदारों के मन की बातें भी, और उसकी आवाज भी उतनी ही दिलचस्प है जितना काउंट का किरदार।
उपन्यास में प्रतीक भी कितने सारे हैं, खुद होटल जो कैद भी है और पनाह भी,
नीना की मास्टर चाबी जो छिपे हुए रास्तों और संभावनाओं को खोलती है,
वो वाइन जो व्यक्तित्व और इतिहास की निशानी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता,
और काउंट की वो दो पैरों वाली मेज जिसमें एक छुपा हुआ दराज था, वो शायद उनके छिपे हुए अतीत और योजनाओं का प्रतीक थी।
बिल्कुल, कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जो इतनी भारी ऐतिहासिक उथल पुथल के बीच भी उम्मीद जगाती है, गर्मजोशी देती है, इंसानियत पर भरोसा मजबूत करती है।
ये बताती है कि असली बड़कपन जन्म या पदवी में नहीं है,
बल्कि चरित्र में है, दया में है, और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत में है।
काउंट की यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक आराम पसंद इंसान जरूरत पड़ने पर मकसद ढूंढता है और फिर निस्वार्थ प्रेम तक पहुंचता है। किताब में एक जगह कहा भी गया है,
हाँ,
इंसान इतने मनमौजी, इतने पेचीदा, इतने मज़ेदार ढंग से विरोधाभासी होते हैं कि वो सिर्फ दूसरे मौके के नहीं बल्कि तीसरे, चौथे और पांचवें मौके के भी हकदार हैं।
सच में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी दीवारें हमें कैद कर सकती हैं, पर हमारे मन की दुनिया वो हमेशा आज़ाद रह सकती है।
और मायने ये नहीं रखता कि दुनिया हमें पहचानती है या नहीं, मायने ये रखता है कि क्या हम में बिना किसी तारीफ की उम्मीद के भी सही रास्ते पर चलने का हौसला है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।